देखिए भाई, किताब पर दुवम अस्माए इशारात जा व जानी व जैनी व ता व ती व तिह व जिह व जिही व तिही व तानी व तैनी व उलाई बिमद्दिन व उला बिकसर। सिवम अस्माए मौसूला अल्लजी अल्लजानी अल्लजैनी वल्लजीना अल्लति अल्लतानि वल्लतैनि वल्लाति वल्लवाति वमा वमन व अयुन व अयतुन। अच्छा, गुज़श्ता सबक में हमने इसमें गैर मुतमक्किन के बारे में पढ़ना शुरू किया था और साहिब नहमीर ने आपको बतलाया कि इसमें गैर मुतमक्किन वो आठ किस्म पर है भाई, उसकी आठ किस्में हैं। इससे पहले उन्होंने बतलाया था कि जो इसम है ये दो किस्म पर है, या वो इसमें मुतमक्किन होगा या इसमें गैर मुतमक्किन। इसमें मुतमक्किन को इसमें मुतमक्किन किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये एराब को जगह देने पर कादिर होता है, और गैर मुतमक्किन को गैर मुतमक्किन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एराब को जगह देने पर कादिर नहीं होता। तो मुतमक्किन का माना है कादिर, जो कुदरत रखने वाला हो भाई, किसी चीज पर कादिर हो। और इन्होंने फिर ये भी बतलाया था कि इसमें गैर मुतमक्किन कि गैर मुतमक्किन वो है जो मबनीउल असल के मुशाबे हो, और मबनीउल असल कितनी चीजें हैं? तीन चीजें हैं। ये सब चीजें याद करते जाओ भाई, ये नहमीर तुलबा जुबानी याद करते हैं, इसमें ये पूरे नहव का खुलासा है भाई। ये चीजें जब याद होंगी तो अगली किताबों में जब मजीद तफसील आएगी तो आपकी नहव की बुनियाद बेहतर होती चली जाएगी। तो मबनीउल असल तीन चीजें हैं, नंबर एक तमाम हरूफ, नंबर दो फेले माजी, और नंबर तीन अमर हाजिर मारूफ भाई। और जो इनके साथ मुशाबे होगा जो इसम, वो भी क्या बन जाएगा? मबनी, और वो इसमें गैर मुतमक्किन है। और दूसरा इसमें मुतमक्किन जो एराब को जगह देता है, एराब को जगह देने पर कादिर है, उसके बारे में भी इन्होंने आपको बतलाया था कि वो मौरब होगा, लेकिन शर्त यह है कि वो अपने आमिल के साथ तरकीब में वाक़े हो। किस में वाक़े हो? तरकीब। रक्कब युरक्किबु, तरकीब का माना है जोड़ना, यानी इसको किसी लफ्ज के साथ जोड़ा गया हो और आमिल भी साथ मौजूद हो भाई, आमिल भी साथ मौजूद हो। तो गुज़श्ता सबक में फिर ये इसमें गैर मुतमक्किन की किस्में हमने पढ़ना शुरू की। इन्होंने बतलाया कि इसमें गैर मुतमक्किन आठ किस्म पर है। पहली किस्म जमीरें भाई, जमीरें, और जमीरें इन्होंने आपको बतलाया कि वो पांच किस्म की हैं भाई, क्योंकि जमीर या मुत्तसिल होगी या मुनफसिल। मुत्तसिल का क्या माना? जो अपने आमिल के साथ जुड़ी हुई हो। मुनफसिल का क्या माना? जो अपने आमिल के साथ जुड़ी हुई ना हो। और फिर ये मुत्तसिल ये मरफू भी हो सकती है, मनसूब भी हो सकती है, और मजरूर भी हो सकती है, लेकिन जो मुनफसिल है वो सिर्फ या मरफू होगी या मनसूब, वो मजरूर नहीं हो सकती, क्योंकि जो मजरूर होती है जमीर वो अपने आमिल से अलग नहीं हो सकती। फिर मरफू मुत्तसिल मैंने आपको बतलाया था कि मरफू मुत्तसिल सिर्फ फेल के साथ जुड़ती है, इसलिए इन्होंने जरबतु जरबना देखो फेल वाली मिसाल दी कि जमीर फेल के साथ जुड़ी हुई है। और मनसूब मुत्तसिल वो मैंने आपको बतलाया था कि वो फेल के साथ भी जुड़ सकती है और हर्फ के साथ भी जुड़ सकती है। जाराबानी ये या क्या है? मफूल की जमीर है और मुत्तसिल है। और इन्ना, ये देखो ये इन्ना का इसम है भाई और इन्ना हर्फ है, तो मनसूब मुत्तसिल किसके साथ जुड़ सकती है? फेल के साथ, और हर्फ के साथ जुड़ सकती है। दो मिसालें याद रखो भाई, जाराबानी और इन्नानी, देखो ये हर्फ के साथ जुड़ रही है और फेल के साथ। और जमीर मजरूर मुत्तसिल जो है वो हर्फ के साथ भी जुड़ सकती है और इसम के साथ भी, फेल के साथ नहीं जुड़ सकती। حرف کے ساتھ جڑے گی تو وہ حرف جر کے ساتھ جڑے گی، اور حرف جر کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے، تو یہ مجرور متصل ہوگی. یا وہ ضمیر مضاف الیہ بنے گی، اسم کے ساتھ جڑے گی، اور مضاف الیہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مجرور. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلام عرب میں دو ہی مجرور ہیں، یا وہ لفظ جس پر حرف جر داخل ہو، یا وہ لفظ جو مضاف الیہ واقع ہو. گئی اور یہ جتنی ضمیریں ہیں یہ پانچ گردانیں یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے بھائی، قل ہو اللہ کی طرح بھائی. آگے دیکھیے بھائی، دوم اسماء اشارات، اس کو عموماً طلبا دوم پڑھتے ہیں، اول دوم، دوم نہیں بھائی، دوم. دوم کا معنی ہے دوسرا، سوم کا معنی ہے تیسرا، چہارم کا معنی ہے چوتھا. تو دوم دال پر بھی پیش پڑھیں اور وہ مشدد ہے اس پر بھی پیش پڑھیں. دوم، دوم اسماء اشارات، دوسرا اسماء اشارات. یہ کس کی قسم بیان ہو رہی ہے؟ اسم غیر متمکن کی. پہلی قسم کیا بیان ہوئی؟ ضمیریں. دوسری قسم کیا بیان ہو رہی ہے؟ اسماء اشارات. اسماء اشارات یاد رکھیے، جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کسی چیز کی طرف، میرے سامنے کتاب پڑی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں ہاذا، دیکھو ہاتھ سے میں نے باقاعدہ اس کتاب کی طرف کیا کیا؟ اشارہ. دیکھو ضمیر ہوا، ابھی گزشتہ سبق میں گزری، ہوا کا کیا معنی تھا؟ وہ. اس میں بھی اشارہ ہو رہا ہے کسی کی طرف، اور ہاذا اس میں بھی کسی چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہوا میں جو اشارہ ہوتا ہے وہ ذہن میں ہوتا ہے، ہاتھ سے اشارہ نہیں کرنا پڑتا. وہ آدمی ہوا، وہ ایک مرد، ہاتھ سے اشارہ نہیں یہاں کرنا، بلکہ دوسرا خود سمجھ جائے گا کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کون مراد ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور اس میں اشارہ کے ذریعے جو اشارہ ہوگا وہ حسی اشارہ، یعنی ظاہراً آنکھوں سے نظر آئے، ہاتھ سے یا انگلی سے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا. میں نے کہا ہاذل کتاب، دیکھو میں نے اشارہ کیا کس کے ذریعے؟ ہاتھ کے ذریعے یا انگلی کے ذریعے اشارہ کرنا پڑے گا. تو اس میں اشارہ میں بھی اشارہ ہوتا ہے اور غائب کی ضمیر میں بھی اشارہ، لیکن اس میں اشارہ کے اندر ہاتھ یا انگلی کے ذریعے حسی اشارہ ہوگا. حسی جو آنکھوں سے نظر آئے، حسی کا کیا معنی؟ آنکھوں سے نظر آئے. ہاتھ کے ذریعے آپ باقاعدہ کسی چیز کی طرف اشارہ کریں. میرے سامنے دو کتابیں پڑی ہوئی ہیں، میں ایک کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں ہاذ الکتاب، یا صرف کہتا ہوں ہاذا، یعنی یہ والی کتاب. تو دیکھو ہاتھ کے اشارے سے آپ سمجھ گئے کہ کون سی کتاب مراد ہے بھائی. اور ضمیر کے اندر بھی اشارہ ہوتا ہے، ہوا وہ آدمی، لیکن وہ ذہن میں ہوتا ہے، وہاں ہاتھ کے ذریعے یا انگلی کے ذریعے اشارہ نہیں ہوگا. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کل زید میرے پاس آیا تھا، وہ بڑا نیک آدمی ہے. توجہ ہے، کل میرے پاس کون آیا تھا؟ زید. وہ بہت نیک آدمی. اب میں نے وہ کہا یا نہیں؟ اور آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ سب سمجھ گئے کہ اشارہ کس کو ہو رہا ہے. اور کوئی میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا یا انگلی سے اشارہ کیا؟ نہیں، آپ ذہن میں ہی آپ سمجھ گئے کہ یہ وہ سے کون مراد ہو، کس کی طرف اشارہ ہے بھائی. تو ضمیر کی اشارہ کون سا ہوتا ہے؟ ذہن میں. دوسرا سمجھ جاتا ہے کیونکہ اس کا پہلے ذکر ہوا ہوتا ہے، تو وہ دوسرا سمجھ جاتا ہے کس کو اشارہ ہے. اور جبکہ اس میں اشارہ میں اشارہ ہاتھ یا انگلی کے ذریعے حسی اشارہ ہو گئے، یعنی آنکھوں سے جو نظر آئے بھائی. تو کہتے ہیں دوم اسماء اشارات، دوسرے نمبر پر جو ہیں وہ اسماء اشارات ہیں. اب وہ اسماء اشارات ذکر کرنے لگے ہیں، دیکھیے بھائی کتاب پر. زا و زانی و زینی. زا کا معنی ہے یہ، اور یہ مذکر کے لیے ہے. ایک چیز ہو اور مذکر ہو تو اس میں اشارہ استعمال کریں گے زا. اور اسی زا کے ساتھ آپ بھی سنتے رہتے ہیں، عموماً عرب ہا ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاذا ہاذا. اس ہاذا میں یہ صرف زا اس میں اشارہ ہے، ہا ویسے ساتھ تنبیہ کے لیے جوڑ دیتے ہیں، تو ہاذا میں زا اشارہ ہے جو انہوں نے یہاں ذکر کر دیا زا. اور یہ کس کے لیے آتا ہے؟ واحد مذکر، ایک چیز ہو اور مذکر ہو. और आगे है जानी व जैनी, ये तस्निया मुजक्कर के लिए आता है, दो चीजें हों और दोनों मुजक्कर हों तो इशारा करके कहेंगे जानी या जैनी, मौके के मुताबिक भाई। रफे का मकाम होगा तो जानी इस्तेमाल करेंगे, नसब या जर का मकाम होगा तो जैनी इस्तेमाल करेंगे। तो ये मुजक्कर के लिए, और उमूमन आप हा के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं, हाजा और हाजानी या हाजैनी। व ता ये मुअन्नस के लिए है, ता व ती व तिह व जिह व जिही व तिही, ये सारे वाहिद मुअन्नस के हैं। भाई देखिए ना, कुछ चीजें आप उर्दू में मुजक्कर बोलते हैं, कुछ चीजें आप उर्दू में मुअन्नस बोलते हैं। आप कहते हैं ये कलम मेरा है, ये कलम मेरा कहा, मेरा मालूम है ये कलम उर्दू में मुजक्कर है, और किताब के बारे में कहते हैं किताब मेरी है, बोलते हैं नहीं बोलते भाई, उसके लिए मेरा बोल रहे हो, इसके लिए मेरी बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? मालूम है कलम का लफ्ज क्या है, मुजक्कर, और किताब का लफ्ज उर्दू में मुअन्नस है। तो जैसे उर्दू में कुछ लफ्ज मुजक्कर इस्तेमाल होते हैं और कुछ मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह अरबी में भी कुछ चीजें मुजक्कर इस्तेमाल होती हैं और कुछ मुअन्नस। तो जो मुजक्कर होंगी उसकी तरफ अगर आपने इशारा करना हो तो हाजा कहेंगे, और मुअन्नस है तो फिर हाजी ही कहेंगे, या ये सारे जो जिक्र कर रहे हैं इनमें से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। तो ता वती वतिह वजिह वजीही, देख रहे हैं भाई, वजीही आप भी इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ हा जोड़कर बोलते हैं, हाजी ही बोलते हैं या नहीं? मुजक्कर के लिए क्या बोलते हैं? हाजा, और मुअन्नस के लिए क्या बोलते हैं? हाजी ही। आज आपको पता चल गया कि हाजी ही में ये जी ही इसमें इशारा है, और ये जो हा साथ जुड़ी है ये अलग आकर जुड़ी है, ये तंबीह के लिए होती है। ये तफसील आप अगली किताबों में पढ़ लेंगे, बस इतना याद रखें कि हाजी ही के अंदर जी ही जो है वो है इसमें इशारा, और हा उससे अलग है भाई। तो कहते हैं वता वती वतिह वजिह वजीही वतीही, ये सारे वाहिद मुअन्नस के लिए लाएंगे, ता से लेकर तिही तक। वतानी वतैनी ये मुअन्नस तस्निया के लिए है, तस्निया मुअन्नस के लिए भाई, दो चीजें हों और मुअन्नस हों तो कभी कहेंगे तानी, कभी क्या कहेंगे तैनी, और तानी रफे वाला मकाम हो तो तानी इस्तेमाल करते हैं, नसब और जर वाला मकाम हो तो तैनी इस्तेमाल करते हैं। व उलाई बिमद्दिन व उला बिकसरिन, और उला ये भी इसमें इशारा है, उलाई ये मद के साथ है, मद, और उला ये कसर के साथ है, यानी मद नहीं है। मद का माना होता है खींचना, खींचना। याद रखो अलिफ के बाद हमजा आ जाए तो उसको, अलिफ को अमूमन खींचकर लंबा पढ़ा जाता है, उस अलिफ को खींचकर लंबा पढ़ा जाता है। चुनांचे आप किरात भी सुनते हैं कारी हजरात की, बाज जगह कुरान में मद लिखी होती है और वो उसको खूब लंबा करते हैं भाई। तो ये मद के कवानीन है बाकायदा, बास हुरूफ को क्या करना पड़ेगा, लंबा पढ़ना पड़ेगा। और एक कानून मैंने जिक्र कर दिया कि अलिफ के बाद अगर हमजा आ जाए तो इस अलिफ को लंबा करेंगे, उलाई। वैसे बोलते हुए नहीं, लेकिन तजवीद में जब कुरान में आप पढ़ते हैं वहां क्या करते हैं, उसको लंबा करते हैं। वैसे तो आम जुबान में तो उलाई पढ़ देंगे, लेकिन तजवीद के साथ जब कुरान वगैरह में पढ़ते हैं वहां खूब लंबा करते हैं। तो बहरहाल देखो, उलाई बिमद्दिन, मद के साथ, ये उलाई किसके साथ है, मद के, यानी अलिफ को लंबा करना है। व उला बिकसरिन, ये कसर के साथ है, यानी इसको ज्यादा नहीं खींचना, आम अलिफ जितना खींचना है, उला उला। आम बोलचाल में उलाई और उला यहां फर्क नहीं मालूम होगा, सिर्फ वो हमजा एक में आ रहा है, एक में हमजा नहीं। एक को मैंने क्या पढ़ा, उलाई, और एक को क्या पढ़ा, उला। तो आम बोलचाल में फर्क का पता नहीं चलेगा, लेकिन कुरान में अगर ये लफ्ज आएंगे तो वहां क्या करना पड़ेगा, तजवीद के साथ इनको लंबा करना पड़ेगा। जो मद वाला होगा उसको ज्यादा लंबा करना पड़ेगा, और जो कसर वाला होगा वो सिर्फ अलिफ के बराबर, जो आम अलिफ होता है उतना लंबा करेंगे। ये उला और उला ये मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ये सब इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, उला, ये सब भाई, ये सब चाहे मर्द हो चाहे औरतें, यानी चाहे मुजक्कर हो या मुअन्नस, इनके लिए उलाई मद के साथ भी इस्तेमाल होता है और उला कसर के साथ भी इस्तेमाल होता है। मद का पता चल गया, मद का भी मद दिन क्या माना, मद के साथ, यानी इसको खींचना है लंबा करना है, और बेकसर का क्या माना के कसर के साथ है, यानी ज्यादा लंबा नहीं करना। तो ये उला और उला दोनों का एक ही मानना है, दोनों किस लिए आते हैं, जमा के लिए, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस, तो चाहे आप उलाई बोल दें चाहे आप उला बोल दें, दोनों का एक ही माना है। अलबत्ता इनके रस्मुल खत याद रखें भाई, उला में आप देख रहे हैं कि वाव लिखा हुआ है अलिफ के बाद, इसी तरह उला जो कसर के साथ है उसमें भी वाव लिखा हुआ है, ये वाव लिखना जरूरी है, अरबी में इनके अंदर वाव लिखते हैं, हां पढ़ते नहीं है, क्योंकि अगर वाव को पढ़ते तो यूं पढ़ते उला उला, हम उला पढ़ रहे हैं या उला पढ़ रहे हैं, उला, अल तो ये वाव लिखना तो है लेकिन पढ़ना नहीं, पढ़ना नहीं। सवाल पैदा होता है कि जब इस वाव को पढ़ना नहीं तो फिर इसको लिखा क्यों जाता है, लिखा क्यों जाता है, तो जवाब ये कि ये जो उला है कसर के साथ, उला उला, अगर इसको वाव के बगैर लिखें, पहले तो पेश और जबरें नहीं होती थी भाई, कदीम जमाने की जो अरबी थी उसमें नुक्ते भी नहीं होते थे, जबर जेर पेश भी नहीं होते थे, क्योंकि अरबों की अपनी जुबान थी और वो उसको पढ़ लेते थे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे थे और उनमें से बाज की नकलें आज भी मिल जाती हैं, अगर वो नकल आपको मिले आप देखेंगे कोई नुक्ता नहीं है पूरे कलाम में और कहीं पर जबर जेर पेश नहीं है। ये नुक्ते और जबर जेर पेश वगैरह ये बाद में हमारे उलमा ने मेहनतें की और कवानीन बना दिए कि जबर इस जैसी हरकत हो तो उसको जबर की सूरत में लिखना है, ऐसी और इस तरह पढ़ेंगे तो जेर की सूरत में लिखना है, कहीं पेश की सूरत में लिखना है, और फिर नुक्ते लगा दिए अलिफ बा ता सा, देखो बा ता सा, इन पर से नुक्ते हटा दो, फर्क कर सकते हैं आप नहीं, आप फर्क ही किसके जरिए करते हैं, नुक्तों के जरिए। ये दरअसल उलमा की मेहनतें हैं, उन्होंने ऐसे आसान कवानीन बना दिए कि आज आपका 7 साल 6 साल का बच्चा भी होता है उसको कहें पढ़ो तो वो कह रहे वो इसको पढ़ता है बा, ता को पहचानता है ता पढ़ता है और सा को सा पढ़ता है। ये उलमा ने मेहनतें की, वजह यह कि पहले तो वो तो अरबों की जुबान थी, कुरान जो सहाबा पढ़ते थे अरबी उनकी जुबान थी, उनके लिए कोई मुश्किल ही नहीं था, लेकिन बाद में इस्लाम फैलना शुरू हुआ, जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो जो गैर अरब थे वो भी इस्लाम में दाखिल हुए, उनके लिए अब कुरान पढ़ना बड़ा मुश्किल था, बहुत मेहनत तलब काम था, तो फिर उलमा ने मेहनतें की, ये अलामतें नुक्ते जेर जबर पेश तनवीन वगैरह मद ये सारी अलामतें उन्होंने मुकरर की। चुनांचे आज आप देखते हैं कि हमारा चंद साल का बच्चा होता है और वो अरबी जुबान का एक लफ्ज नहीं जानता लेकिन कुरान वो बेहतरीन पढ़ रहा होता है अरबों के अंदाज में भाई, वो किसकी वजह से, ये जो नुक्ते पेश जबर पेश वगैरह हैं भाई। तो ये जो उला है, उला देखो इस लफ्ज पे नजर रखें, इसके अंदर वाव हम लिखते हैं, उलमा ने लिखा क्यों, अगर इस वाव को न लिखें तो अलिफ को लाम या के साथ मिलाकर लिखना पड़ेगा और एक लफ्ज है अरबी में इला, हुरूफे जारा में से एक क्या है इला, तो इला और उला में कोई फर्क ही नहीं कर सकेगा, पहले तो जबर जेर पेश नहीं थे ना, तो अगर इसको भी अलिफ लाम या के साथ लिखते और उसको भी अलिफ लाम और या के साथ लिखते, न जबर है न जेर है न पेश है कुछ नहीं है, तो किसी को क्या पता चलेगा कि ये इला लिखा है या उला लिखा है। ये इसी तरह एक इसमें मौसूल भी आता है, इसमें मौसूल उला, वो भी उला है लेकिन उसमें वाव नहीं लिखते, उसमें वह, तो ये फर्क करने के लिए उलमा ने फिर इसमें वाव का इजाफा, इसमें वाव के साथ लिखना जरूरी करार दिया भाई। बात समझ में आ गई, तो फर्क करने के लिए इस उला को जो इसमें इशारा है वाव के साथ लिखा गया और वो उला जो इसमें मौसूल है उसको बगैर वाव के, इसी तरह वो इला जो हरफे जर है उसको भी बगैर वाव के लिखा गया। ये थे अस्माए इशारात। आगे देखिए भाई, सेवम अस्माए मौसूला, तीसरा इसमें मुतमक्किन जो है वो अस्माए मौसूला है, तीसरी किस्म इसमें गैर मुतमक्किन की वो अस्माए मौसूला है। अस्माए मौसूला, अस्माए मौसूला कौन से हैं, देखिए भाई, अल्लज़ी, किताब पे नजर रखना भाई, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी, अल्लज़ीना। एराब हरकतों पर नजर है जो एराब लगाए हुए हैं, कैसे पढ़ना है, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी और अल्लज़ीना और अल्लदी, अल्लतानी, वल्लतैनी, वल्लाती, वल्लवाती। जी इसमें याद रखें, अल्लज़ी आएगा वाहिद मुजक्कर के लिए, अगर एक हो और मुजक्कर चीज हो उसके लिए क्या लाएंगे, अल्लज़ी। पहले ये देख लें, पहले ये समझ लें कि इसमें मौसूल भाई, इसमें मौसूल का तर्जमा अमूमन करते हैं वो जो के, अल्लज़ी, वो जो के। अब इससे किसी को बात समझ में नहीं आती, वो जो के क्या माना, वो जो के, तो इसके लिए फिर सिला चाहिए होता है, इसमें मौसूल के बाद क्या चाहिए, सिला। सिला जो है वो जुमला होता है, तो मौसूल इसमें मौसूल कलाम में जब भी आएगा उसके साथ एक जुमला आएगा जुड़ा हुआ जिसको उसका सिला कहते हैं। इसमें मौसूल के साथ हमेशा क्या आएगा, सिला। सिला क्या होता है, एक जुमला। तो इसमें मौसूल कलाम में जहां कहीं भी आ जाए इसके बाद हमेशा जुड़ा हुआ एक जुमला आता है जिसको इसका सिला कहते हैं। और ये इसमें मौसूल का माना हमें तब ही समझ में आता है जब इसके साथ सिला को जोड़ दें। तवज्जो है, इसमें मौसूल का माना वैसे समझ में नहीं आता जब तक इसके साथ सिला ना जोड़ें, सिला जोड़ेंगे तो इसके मौसूल का माना समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया अल्लज़ी का क्या माना, वो जो के, वो जो के। कुछ आपको समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहा हूं, नहीं। हां अब मैं जरा इसके साथ सिला जोड़ता हूं, अल्लज़ी ज़रबा का, वो जिसने के आपकी पिटाई की थी, ज़रबा उसने पिटाई की, का आपकी, अल्लज़ी ज़रबा का, वो जिसने के आपकी पिटाई की। अब देखो आपको बात समझ में आ गई कि किस आदमी की बात हो रही है, जिसने मेरी पिटाई की थी। हां लेकिन बात पूरी नहीं है, वो जिसने आपकी पिटाई की थी, फिर मैं कहता हूं अल्लज़ी ज़रबा का, वो जिसने आपकी पिटाई की थी, फिर मैंने कहा अल्लज़ी ज़रबा का, वो जिसने आपकी पिटाई की थी। आप कहेंगे भाई बात तो पूरी करें, आप तो बात ही पूरी नहीं कर रहे, वो जिसने मेरी पिटाई की थी उसको क्या हुआ, वो मर गया है, जिंदा है, कहीं चला गया है, बीमार है, बात तो पूरी करें। तो देखा इसमें मौसूल के साथ हमेशा क्या चाहिए, सिला, और सिला क्या होता है, जुमला। लेकिन ये जुमला इसमें मौसूल के साथ जब जुड़ जाए तो फिर इसमें मौसूल का माना समझ में आता है, और फिर भी ये कलाम ताम नहीं है, पूरी बात इसके अंदर नहीं है, उसके लिए आगे और लफ्ज चाहिए जो बात को पूरा कर दे। कि मसलन वो जिसने आपकी पिटाई की थी वो कल आया था, अब बात पूरी हो गई, बात समझ में आ गई। तो इसमें मौसूल किसे कहते हैं, जो अपने माना बताने के लिए किसका मोहताज हो, सिले का। और सिला क्या होता है, जुमला, जो इसमें मौसूल के फौरन बाद आता है। तो जब भी कलाम के अंदर इसमें मौसूल आए आपने फौरन उसके साथ वाले जुमले को देखना है, वो उसका सिला होगा, उसको इसमें मौसूल के साथ जोड़ेंगे फिर इसमें मौसूल का माना आपको समझ में आएगा। जैसे अल्लज़ी, वो जो के, या वो जिसने के, देखो तर्जमा नहीं समझ में आ रहा, और आगे ज़रबा को साथ जोड़ा तो पूरा तर्जमा हो गया, वो जिसने आपकी पिटाई की थी, अब माना समझ में आ गया कि अल्लज़ी से कौन मुराद है। फिर इसमें यह भी देखें, किताब पर नजर रखें, अल्लज़ी ये मुफ़रद मुज़क्कर के लिए है, एक हो और मुज़क्कर चीज हो, अल्लज़ानी ये तस्निया मुज़क्कर के लिए है, और अल्लज़ैनी ये भी तस्निया मुज़क्कर के लिए, अल्लज़ानी भी और अल्लज़ैनी भी, और दोनों तस्निया के लिए, लेकिन रफा के मकाम में अल्लज़ानी इस्तेमाल करते हैं और नसब और जर वाली सूरत में अल्लज़ैनी इस्तेमाल करते हैं। अगला लफ्ज है अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, मेरी किताब में ये अल्लज़ीना दो लाम लिखे हुए हैं, आपकी किताबों में किस तरह है, دو لام ہیں، یہ کتابت کی غلطی ہے، یہ ایک لام کے ساتھ ہونا چاہیے. اللذین، قرآن میں آپ جگہ جگہ پڑھتے ہیں اللذین، تو وہاں وہ ایک لام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. تو اور یہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے. اللذی کس کے لیے؟ پھر نہیں نہیں شروع سے، اللذی واحد مذکر، اللذانی اور اللذینی تثنیہ مذکر، اور اللذینا جمع مذکر کے لیے، اور اللتی یہ واحد مؤنس کے لیے، اللتی واحد مؤنس کے لیے استعمال ہوگا. یاد رکھنا یہ اس میں موصول جتنے ذکر ہو رہے ہیں ان کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں الف لام آ رہا ہے، تو یہ جن جن کے شروع میں الف لام آ رہا ہے ان میں سے صرف تین ایسے ہیں جن میں ایک لام لکھنا ہے. کون کون سے؟ اللذی پہلا جو ہے واحد مذکر والا، اللذی اس میں ایک لام لکھتے ہیں عربی کے اندر، اور یہ جو جمع ہے اللذین جمع ہے اس کو بھی ایک لام کے ساتھ لکھتے ہیں، اور اللتی اس کو بھی ایک لام کے ساتھ لکھتے ہیں. باقی جتنے ہیں وہ جن کے شروع میں الف لام ہے وہاں دو لام ہیں. دیکھو اللذانی کتنے لام لکھے ہیں؟ دو لام. اللذینی کتنے لام ہیں؟ دو لام. اللتانی کتنے لام ہیں؟ دو لام. اللتینی، اللاتی، اللواتی، دیکھو سب کے اندر دو لام ہیں. تو صرف تین اسماء موصولہ ایسے ہیں جن کو لکھتے ہوئے آپ نے ایک لام لکھنا ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا اللذی واحد مذکر، دوسرا اللذین جو جمع مذکر ہے، اور تیسرا اللتی ہے. بھائی اللتی ہے، دیکھو اللذانی، اللذینی اور اللذین، توجہ ہے بھائی، اللذانی، اللذینی اور اللذین. اگر اللذین میں بھی دو لام لکھتے تو پھر اللذینی سے فرق نہ ہوتا. اگر زیر زبر پیش نہ ڈالو، اللذینی میں بھی دو لام لکھیں ذال یا نون، تو اللذین میں بھی اگر دو لام ذال یا نون پھر تو فرق ہی نہ ہوتا. تو علماء نے فرق کرنے کے لیے اللذینی کے اندر کتنے لام رکھے ہیں؟ دو، اور اللذین میں ایک لام، تو اللذینی سے فرق کرنے کے لیے اللذین میں ایک لام لکھا جاتا ہے. چنانچہ قرآن میں بھی آپ دیکھ لیں گے جہاں اللذین ہوگا وہاں ایک لام ہوگا، اور کہیں اگر اللذینی آئے تو وہاں پر دو لام ہوں گے. تو عام عربی کتابوں میں آپ نے اس کے ذریعے پہچاننا ہے، جہاں ایک لام ہو اس کو ہمیشہ کیا پڑھنا؟ اللذین، اور جہاں دو لام ہو اس کو کیا پڑھنا؟ اللذینی. معلوم ہو یہ تثنیہ ہے بھائی. جی اب پھر دوبارہ دیکھیے، اللذی جو ہے واحد مذکر کے لیے آتا ہے، اللذانی جو ہے اللذانی اور اللذینی یہ تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے. حالت رفعی میں کہیں گے اللذانی، حالت نسبی جری میں کہیں گے اللذینی، اور آگے اللذین ہے یہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، یہ اسی طرح رہتا ہے رفع نصب جر تینوں میں، اور اللتی یہ واحد مؤنث کے لیے ہے، اللتانی اللتینی یہ تثنیہ مؤنث کے لیے، حالت رفعی میں کیا کہیں گے؟ اللتانی، اور حالت نسبی جری ہو تو اللتینی. واللاتی واللواتی یہ جمع مؤنث کے لیے ہیں دونوں بھائی، اللاتی اور اللواتی. وما ومن، ما اور من یہ بھی اسماء موصولہ ہیں، اسماء موصولہ. البتہ ما جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے عام استعمال ہوتا ہے، جبکہ من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. توجہ ہے بھائی، کیا بات کی میں نے؟ کہ ما جو ہے عام طور پر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من کس کے لیے؟ ذوی العقول. ذوی العقول کا معنی ہے عقل والے، عقل والے، اور عقل والی مخلوقات تین ہیں بھائی، انسان، جنات اور فرشتے، ان کو ذوی العقول کہتے ہیں، عقل والے. انسانوں کو بھی اللہ نے عقل دی، جنات کو بھی اللہ نے عقل دی، اور فرشتوں کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، تو یہ ذوی العقول کہلاتے ہیں، اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ غیر ذوی العقول ہیں. تو ذوی العقول کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ من، من، اور غیر ذوی العقول کے لیے زیادہ تر وہ ما استعمال کرتے ہیں، تو یہ فرق ہے. اور نیز یہ ما اور من मुफरत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तस्निया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और जमा के लिए भी, तीनों के लिए यही इस्तेमाल करते हैं मा और मन। व अयुन व अयतुन, इसी तरह अयुन और अयतुन ये भी क्या है, अस्माए मौसूला हैं। व अलिफ व लाम बमाने अल्लजी, और वो अलिफ लाम जो अल्लजी के माना में हो, दर इसमें फाइल और इसमें मफूल, इसमें फाइल और इसमें मफूल में, जो अज़ारिबु वल मज़रूबु। याद रखो एक होता है फाइल, एक होता है इसमें फाइल, तवज्जो है, एक होता है फाइल और एक होता है इसमें फाइल। फाइल वो है जिसको फेल रफा दे, ज़रबा ज़ैदुन, जैद ने पिटाई की, ज़रबा फेल और ज़ैदुन उसका फाइल। देखो ज़रबा ने ज़ैदुन को रफा दे दिया, तो ज़रबा है आमिल और ज़ैदुन है उसका मामूल, और ज़ैदुन क्या है मुअरब, और मुअरब क्या करता है इराब को जगह देता है, इसीलिए ज़ैदुन इसने रफा को जगह दे दी, तो ज़रबा ज़ैदुन, ज़रबा फेल और ज़ैदुन उसका फाइल। तो फाइल किसे कहते हैं, जिसको फेल रफा दे, ज़रबा ज़ैदुन, फेल ने किसको रफा दिया ज़ैदुन को, इसको फाइल कहते हैं। और एक होता है इसमें फाइल, इसमें फाइल वो खास सीगा जो आपने गर्दानों में पढ़ा है, ज़ारिबुन, फातिहुन, मानिउन, मुकरिमुन, मुस्तखरिजुन, मुतसर्रिफुन, ये सारे किसके सीगे हैं, इसमें फाइल। तो फर्क समझ में आया, फाइल किसको कहते हैं जिसको फेल रफा दे, ज़ारबा ज़ैदुन, ज़ैदुन क्या है फाइल है, ज़ारबा अमरुन, अमरुन क्या है फाइल, ज़ारबा खालिदुन, खालिद क्या है फाइल। तो जिसको भी फेल रफा दे वो फाइल है, लेकिन इसमें फाइल, इसमें फाइल वो खास सीगा जो आपने कहां पढ़ा, गर्दानों के अंदर, वो इसमें फाइल का सीगा भाई। और इसी तरह एक होता है मफूल, एक होता है इसमें मफूल। मफूल उसको कहते हैं जिसको फेल नसब दे, और इसमें मफूल वो है जो वो जो खास सीगा आपने गर्दानों में पढ़ा, मजरूबुन, मफतूहुन, मुकरमुन, मुस्तखरजुन, वो क्या है इसमें मफूल। फर्क समझ में आया, मफूल किसे कहते हैं जिसको फेल नसब दे, ज़रबतु ज़ैदन, ये ज़ैदन क्या है मफूल है, ये मनसूब होता है, मफूल क्या होता है मनसूब। ज़रबतु ज़ैदन, ये ज़ैदन क्या है मफूल। ज़रबतु बकरन, ये बकरन क्या है मफूल। ज़रबतु खालिदन, ये खालिद क्या है मफूल है, लेकिन इसको इसमें मफूल नहीं कह सकते, इसमें मफूल वो जो खास सीगा आपने गर्दानों में पढ़ा। और याद रखो ये जो इसमें फाइल और इसमें मफूल के सीगे हैं, यानी ज़ारिबुन और मज़रूबुन, फातिहुन और मफतूहुन, मानिउन और ममनूउन, मुकरिमुन और मुकरमुन, मुस्तखरिजुन और मुस्तखरजुन, जो आपने बाबों में पढ़े हैं भाई, हर एक में इसमें फाइल भी आता है और इसमें मफूल। तो ये जो इसमें फाइल और इसमें मफूल के सीगे हैं, इन पर अलिफ्लाम आता है। जारिब में कहते हैं अज़ारिबु, अलिफ्लाम ऊपर आ गया। मजरूब में कहते हैं अल मजरूबु, फातिह में कहते हैं अल फातिहु, मफतूह में कहते हैं अल मफतूह। तो ये जो इसमें फाइल और इसमें मफूल के सीगे हैं, इन पर अलिफ्लाम दाखिल होता है। याद रखो ये जो इसमें फाइल और इसमें मफूल के सीगों पर अलिफ्लाम आए, वो इसमें मौसूल होता है। वो क्या होता है, इसमें मौसूल होता है। अलिफ्लाम दरअसल हर्फ है। अलिफ्लाम क्या है, अलिफ्लाम अर्रजुल, मसलन रजुल का माना मर्द, और अर्रजुल देखो अलिफ्लाम आया, तो ये हर्फ है अलिफ्लाम। लेकिन जो इसमें फाइल और इसमें मफूल के सीगों पर अलिफ्लाम आता है, वो हर्फ नहीं है, वो इसम है। और कौन सा इसम है, अभी आपने पढ़ा, इसमें मौसूल है, यानी ये अल्लजी के माना में है। किस माना में, तो अज़ारिबु, इसका तर्जमा कैसे करेंगे, अज़ारिबु में जो अलिफ्लाम है उसकी जगह ले आओ अल्लजी, और ज़ारिब उसको फेल की सूरत दे दो। ज़ारिब इसके लिए फेले मारूफ ले आओ, फेले मुजारे, यज़रिबु, यज़रिबु, तो अज़ारिब से क्या बना लिया, अल्लज़ी यज़रिबु, अल्लज़ी वो जो के यज़रिबु पिटाई करता है। अज़ारिब का भी क्या माना, अज़ारिबु वो जो के पिटाई करता है, और अज़ारिब किस माना में है? अल्लज़ी, अलिफ लाम की जगह क्या आया? अल्लज़ी, और ज़ारिब की जगह क्या आया? यज़रिबू। अल्लज़ी यज़रिबू, वो जो के पिटाई करता है। अल मज़रूब में भी इसी तरह कर लो, अल मज़रूब, अलिफ लाम की जगह क्या ले आओ? अल्लज़ी, और मज़रूब मफ़ऊल है तो इसके लिए फ़िले मजहूल ले आओ। अल्लज़ी युज़रबू, अल्लज़ी युज़रबू, तो अज़ारिब किस माना में हुआ? अल्लज़ी यज़रिबू, वो जो कि पिटाई करता है। और अल मज़रूब किस माना में हुआ? अल्लज़ी युज़रबू, वो जिसकी पिटाई की जाती है। तर्जमा समझ में आ रहा है? तो इसमें फाइल और इसमें मफूल पर जो अलिफ लाम आए वो किस माना में होता है? वो इसमें मौसूल है और वो अल्लज़ी के माना में है। तो कहते हैं वह अलिफ और लाम बमाने अल्लज़ी, अलिफ और लाम जो अल्लज़ी के माना में हो, दर इसमें फाइल और इसमें मफूल, इसमें फाइल और इसमें मफूल में जो अज़ारिबु वल मज़रूबु, जैसे अज़ारिब और अल मज़रूब, इन पर जो अलिफ लाम आया ये क्या है? इसमें मौसूल है। वज़ू बमाने अल्लज़ी दर लुगत बनी क़ै, और वो ज़ू जो अल्लज़ी के माना में आता है दर लुगत बनी क़ै, बनू क़ै की लुगत में। बनू क़ै अरब का एक कबीला था, उसका नाम था बनू क़ै। कबीले के नाम कैसे पढ़ते थे? कोई उनका बाप दादा मशहूर गुजरता तो उसी के नाम से मशहूर हो जाते कि ये उसकी औलाद हैं, ये उसके बच्चे हैं। तो तय जो है, कोई उनका बाप दादा गुजरा होगा उसका नाम क्या होगा? तय। बनू तय यानी तय के बेटे, तय के बेटे। तो इस तरह कबीला मशहूर हो जाए, जैसे बनू तमीम, बनू तमीम। मालूम हुआ कोई इनका बाप दादा तमीम नाम का गुजरा होगा और कोई बड़ा मोतबर आदमी होगा, बड़ी शोहरत होगी, ऐसी सिफात उसकी होंगी, नाम होगा उसका, तो बस वो मशहूर हो गया और उसके बेटे भी फिर उसी नाम से मशहूर हो गए कि ये तो बनू तमीम, ये तमीम के बेटे हैं। वो नस्ल दर नस्ल फिर खानदान फैलता चला जाता है नीचे, बच्चे और फिर बच्चों के बच्चे और फिर उनके बच्चे, तो कई नस्लों में जाकर पूरा फिर कबीला बन जाता है बहुत बड़ा। तो ये बनू तय, ये तय एक कबीला गुजरा है। और लुगत, लुगत का माना होता है जुबान, जुबान। दर लुगत बनी तय, बनू तय की जुबान में, बनू तय की ये कबीला गुजरा और उसकी जुबान में। जू का लफ्ज भी इसमें मौसूल के तौर पर आता है। अरब, आम अरब के हां तो जू इसमें मौसूल के माना में नहीं, लेकिन उस कबीले वाले जू का लफ्ज भी बोलते थे और वो भी इसमें मौसूल है। तो ये जगह जगह उनका कलाम या उनके अशार वगैरह कभी सामने आ जाते हैं तो ये तलबा को समझाने के लिए कि ताकि उनके जहन में रहे, अगर कहीं पर जू का लफ्ज आ जाए तो समझ जाना कि ये किस माना में है। ये कबीला तय की जुबान के अंदर ये शेर है और वो जू अल्लज़ी के माना में इस्तेमाल करते थे। ये माना है वजू बमान अल्लज़ी, और वो जू जो अल्लज़ी के माना में हो, दर लुगत बनी तय, बनू तय की जुबान में, उनकी लुगत में। बनू तय भाई ये वही कबीला है, आपने भी सुना है हातिम ताई भाई, हातिम ताई, ये उसी तय कबीले से था। लाहौर वाले को क्या कहते हैं? लाहौरीयुन। तो तय कबीला तय वाले को कहते हैं ताईयुन, हातिम ताई। देखा क्या माना? हातिम कबीला तय वाला, तो ये हातिम ताई उसी कबीले से था। और याद रखना ये हातिम ताई ये अहले ईमान में से था भाई, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर था और हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से की बेहसत से कुछ पहले इसका इंतकाल हुआ है। और हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले दीन ईसवी जो था वो हक था भाई, हक था। तो ये दीन ईसवी पर था और अहले ईमान में से था। और जो इसके बेटे बेटे जो हैं वो अदी इब्ने हातिम, वो ईमान लेकर आए भाई, वो सहाबी रसूल हैं भाई। आगे देखिए नहु जा अनी दू जाराबा का, जैसे कि जा अनी जू जाराबा का। ये जू कौन सा है? कबीला तय वाला। इस जू को हटाओ और इसकी जगह अल्लज़ी रख दो। जा अनी लजी जाराबा का, जा अनी मेरे पास आया, अल्लज़ी ज़ाराबा का वो जिसने आपकी पिटाई की। तो ये जू किस माना में है? अल्लज़ी। तो जू देखो इसमें मौसूल है और ज़रबा का ये पूरा जुमला उसका सिला, मौसूल और सिला मिलकर ये जाआ के लिए फाइल बन गए। आए मेरे पास कौन आए? आया मेरे पास कौन आया? जू ज़रबा का आई, अल्लज़ी ज़रबा का, जिसने आपकी पिटाई की, तो ये फाइल बन रहा है। आगे कहते हैं बिदान के अयुन व अयतुन मौरबस्त, जान ले तू के अयुन और अयतुन मौरब है, अयुन और अयतुन मौरब है। अभी पीछे अस्माए मौसूला गुजरे हैं, उनमें इन्होंने अयुन और अयतुन को भी जिक्र किया, तो आपको बतला रहे हैं कि अयुन और अयतुन मौरब है। इस पर आपके जहन में इश्काल आएगा कि अगर ये मौरब है तो ये बहस तो चल रही है इसमें गैर मुतमक्किन की, और इसमें गैर मुतमक्किन तो क्या होता है? मबनी होता है, तो फिर मबनी के अंदर इनको क्यों जिक्र किया? तो एक जवाब तो ये कि मुसन्निफ चूंकि अस्माए मौसूला गिनवा रहे थे तो सारे गिनवा दिए, उसमें अय्यून और अय्यतून को भी जिक्र कर दिया ताकि सारे इकट्ठे हो जाएं, और फिर आखिर में बता दिया कि ये दोनों क्या हैं? मुहर्रम। ये इसलिए इनको जिक्र किया क्योंकि ये अय्यून और अय्यतून जो हैं इनके इस्तेमाल की कई सूरतें, चार सूरतें हैं, इनके इस्तेमाल की चार सूरतें हैं, उन चार में से तीन सूरतों में ये मौरब हैं और एक सूरत में ये मबनी हैं। तो चूंकि एक सूरत में ये मबनी थे इसलिए इनको यहां पर मबनी की बहस में जिक्र कर दिया। हासिले कलाम फिर सुन लो, आज हमने अस्माए इशारा और अस्माए मौसूला के बारे में पढ़ा। अस्माए इशारा मैंने आपको बतलाया वो है जो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये इशारा हिस्सिया होगा यानी हाथ या उंगली के साथ जो आंखों से नजर आए, और जबकि इसी तरह जमीर है उसके जी भी किसी चीज की तरफ इशारा होता है लेकिन वो इशारा जहन में होता है। और फिर वो अस्माए इशारा कौन कौन से हैं वो इन्होंने बतला दिए, तो अस्माए इशारा इन्होंने आपको गिनवा दिए कि कुछ अस्माए इशारा वो हैं जो मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ मुअन्नस के लिए, फिर कुछ वाहिद के लिए, कुछ तस्निया के लिए और कुछ जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं, और फिर उलाई आया मद के साथ भी है उलाई, और उला कसर के साथ भी है, और मैंने बतलाया कि इसमें वो जरूर लिखते हैं, ये किससे फर्क करने के लिए? इला से, और इसी तरह एक उला है वो इसमें मौसूल है उससे फर्क करने के लिए वाव लिखते हैं भाई, क्योंकि पहले ये एराब और नुक्ते वगैरह नहीं होते थे भाई। उसके बाद इन्होंने अस्माए मौसूला बताए। अस्माए मौसूला में मैंने आपको बतलाया कि तीन इसमें मौसूल ऐसे हैं जिनको एक लाम के साथ लिखते हैं, बाकी जितने को शुरू में अलिफ लाम आए उनमें दो लाम लिखते हैं। वो तीन कौन कौन से हैं? अल्लज़ी मुफ़रद मुज़क्कर, अल्लज़ीना जमा मुज़क्कर, और अल्लती ये इनको वाहिद मुअन्नस जो है, और बाकी के में दो लाम लिखते हैं। फिर मा और मन आया, मैंने आपको बतलाया कि मा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? गैर ज़विल उकूल के लिए, और मन ज़विल उकूल के लिए, और ये जो है मुफ़रद के लिए भी इसी तरह इस्तेमाल होते हैं मा और मन, तस्निया के लिए भी इसी तरह इस्तेमाल होते हैं मा और मन, और जमा के लिए भी इस्तेमाल होते हैं मा और मन भाई। उसके बाद अयुन और अयतुन बतलाया, वो भी अस्माए मौसूला हैं, अलबत्त आखिर में बतलाया ये मौरब हैं। सवाल पैदा हुआ जब मौरब हैं तो यहां क्यों जिक्र किया? तो मैंने वजह जिक्र कर दी कि इसलिए जिक्र किया क्योंकि अस्माए मौसूला को जिक्र कर रहे थे तो सारों को इकट्ठा जिक्र कर दिया, एक दो अगर मौरब भी हो गए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन कम अज कम तालिबे इल्म को पता चल गया कि ये भी क्या है? अस्माए मौसूला हैं, और आखिर में बतला दिया कि ये मौरब हैं। या बाज ये जवाब देते हैं कि अयुन और अयतुन के इस्तेमाल की चार सूरतें हैं, चार तरीके से ये कलाम अरब में इस्तेमाल होता है, और उन चार में से एक सूरत में ये मबनी होता है, तो एक सूरत में चूंकि मबनी था इसलिए इनको कहां जिक्र कर दिया? मबनी की बहस में जिक्र कर दिया। और फिर आपको ये भी इन्होंने बतलाया कि वो अलिफ लाम जो इसमें फाइल और इसमें मफूल के सिगों पर दाखिल होता है वो भी इसमें मौसूल है, तो अज़ारिब किस माना में होगा? अल्लज़ी यज़रिबु, और अल-मज़रूब किस माना में होगा? अल्लज़ी युज़रबु। दूसरी मिसाल अल-मानिउ किस माना में होगा? अल्लज़ी मानिउ से फेल बना लो यमनाउ, अल्लज़ी यमनाउ, अल-मानिउ किस माना में? अल्लज़ी यमनाउ, और अल-ममनूउ ये किस माना में होगा? अल्लज़ी युमनाउ भाई। और फिर इन्होंने आपको बतलाया कि कबीले तय की जुबान में जू भी आता है जो अल्लजी के माना में है और इसमें मौसूल है, जैसे जा अनी जू जाराबा का आई जा अनी लजी जाराबा का। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।